कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राघव रूप में आना, तुम राघव रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, एक नंबर चले आना, चले आना एक नंबर चले आना, चले आना एक नंबर चले आना। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहते हुए ये ख्याल। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहते हुए ये ख्याल आ गया। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। Ha 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 ha
सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। व्यासपीठ पर उपस्थित महाराज श्री हमारे शांति मंदिर से पधारे सभी हमारे लिए विद्यार्थी यहां के लिए भूदेव संगीत विमल जी और उनके सभी साथी प्रेमपुरी आश्रम के सभी व्यवस्थापक मंडल सेवा करने वाले सभी अन्य अन्य मुंबई शहर के अच्छे साइड के अच्छे लोग साउथ मुंबई मुंबई में अच्छा माना जाता है तो छात्रों को मैंने यही कहा कि प्रेमपुरी आश्रम में जो आते हैं अच्छे घर के अच्छे लोग सत्संग के लिए आते हैं और हमारे महाराज श्री के साथ यहाँ प्रेमपुरी जी महाराज के 50वां निर्वाण महोत्सव से आना हुआ और अभी 59वां 59th होने जा रहा है या हो रहा है उसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है। तो महाराज श्री का खूब खूब आभार और अभिनंदन करता हूँ कि बहुत छोटे से हमारे उनके साथ और उनके गुरु जी के प्रेरणा प्रोत्साहन से ये जो हम कार्य कर रहे हैं और जिसे मैंने हमारे छात्रों के माध्यम से सुना महाराज श्री बहुत कुछ कहते आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं क्या नहीं वो तो सब आप सुन चुके हैं। बस हम यही चाहते हैं कि अभी कुछ दिन पूर्व एक महाराज श्री के शोरशी में थे तो महाराज श्री के ध्यान कमरे के लिए किसी ने कहा कि हम इसको स्मारक बनाएंगे तो किसी संत ने कहा कि महाराज जब यहाँ पूजा पाठ करते थे तो यहाँ ध्यान का स्थान होना चाहिए एक म्यूजियम न बने ऐसा हमको प्रयास करना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि ये श्री प्रेमपुरी आश्रम शायद महाराज प्रेमपुरी जी ने जिस उद्देश्य से इसको एक अध्यात्म स्थान मुंबई दक्षिण मुंबई में बनाया वो अभी भी चल रहा है एक म्यूजियम या स्मृति मात्र से नहीं रहा और हमारे महाराज श्री अभी उसके अध्यक्ष पद पर तकरीबन 10 वर्ष से इस कार्य को कर रहे हैं। तो महाराज श्री आप सभी को यही आशीर्वाद और प्रेरणा देते रहे कि जो हमारे पूर्वज के वरिष्ठ विद्वान महात्माओं ने जिस इच्छा और भावना से इस आश्रम को बनाया है कि वो आश्रम उसी उद्देश्य और भावना से हम सब मिलकर चलाते रहें और आज बहुत सुंदर जो है कृष्ण जन्म का उत्सव होने जा रहा है। मैं भी एक श्रोता बनकर ही आया हूँ महाराज श्री के कथा का आनंद हमने लिया है। वास्तव में जब मुझे नीचे कहा कि यह सुबह 2.5 घंटा और शाम को 2.5 घंटा कोई वैकुंठ का अनुभव कर रहे हैं तो वास्तव में जब अंदर प्रवेश किया तो वैसे ही अनुभव किया तो महाराज श्री स्वतः भी पवित्र जीवन जीते हैं और वो हम सभी को यही प्रेरणा देते हैं कि हम वैसे ही पवित्र जीवन जीने का प्रयास करें। तो यही इतने ही शब्दों को कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं ताकि हम महाराज श्री का कथा का आनंद ले सकते हैं और जैसे आप लोग का नियमित कार्यक्रम प्रारंभ होता है वैसे करें। इतने कहते हुए वाणी को विराम।
नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा गोपाला नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा गोपाला श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा गोपाला श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा गोपाला हरि बोल नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा गोपाला नटवर नागर नंदा बजो रे मन गोविंदा गोपाल सखियन में राधा बड़ी है सब सखियन में राधा बड़ी है सब सखियन में राधा बड़ी है सब सखियन में राधा बड़ी है जैसे नदियों में गंगा भजोरे मन गोविंदा जैसे नदियों में गंगा भजोरे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा सब ग्वालन में कृष्ण बड़े हैं 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 जैसे गगन में चंदा भजोरे मन गोविंदा जैसे गगन में चंदा भजोरे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा भक्तजन मिल सब मंगल गावत 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 जैसे भक्तों का मन शुद्ध भजोरे मन गोविंदा जैसे भक्तों का मन शुद्ध भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन
सन्नो मित्रः सन्नो भवत्वर्यम् सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णु नमो ब्रह्मणे नमस्ते। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं वंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चरा तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। आनन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपादकन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं गच्छति। श्रीविश्वनाथं शरणं गच्छति। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। प्रेमपुरी जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पुनः एक बार उस परम 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 पिता परमात्मा की कृपा से हम सभी उसका गुणगान श्रवण करने के लिए प्रेमपुरी आश्रम में उपस्थित हुए हैं। भगवान वेदव्यास जी ने जिस परमात्मा का निर्देश किया है वह परमात्मा अव्यक्त जन्माद्यस्यतः मंगलाचरण में जो परमात्मा का जो संकेत है उत्पत्ति स्थिति और लय इस जगत का जो कारण है उसका हम लोग ध्यान करते हैं सत्यम परम धीमहि वो अव्यक्त परमात्मा जिसको हम इस चर्म चक्षु से नहीं देख सकते हैं वो सत्य है उसका हम ध्यान करते हैं परंतु वो परमात्मा कैसे हैं उसको जानने के लिए आज हम लोग यहां पर बड़े व्याकुल हैं क्योंकि हम सबको पता है कि आज जिसका निर्देश भगवान वेद व्यास जी ने किया है उसका आज प्रादुर्भाव होने वाला है और इसीलिए जब भगवान का प्रादुर्भाव होता है उसको उस उत्सव में सबको बड़ा आनंद आता है उस आनंद के क्षण में आज हमारे साथ में बहुत ही दिव्य वर्तमान के मनीषी विचारक सनातन धर्म के प्रचारक और हमारे सुहृदय हमारे मित्र हमारे साथी कभी कभी हम लोग एक दूसरे से चर्चा करते हैं आप लोगों को भी मैं बताता हूं कि हम लोग यहां तो रहते ही रहते हैं और कभी कभी विदेशों में भी साथ में रहते हैं और जो आप लोग ये दृश्य देख रहे हैं एक प्रकार से इनके गुरुकुल के स्वामी हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी नित्यानंद सरस्वती जी महाराज आज यहां पर विराजमान हैं जब संत विचार करते हैं संत विचार करते हैं तब परमात्मा का प्रागट्य होता है भगवान का अनुभव होता है और यही कुछ आप आज अनुभव करने वाले हैं बहुत से लोग स्वामी जी से मुझे पूछते हैं कि तुमने गुजराती आवड़े छे स्वामी जी के आश्रम में कितने वर्ष हुए 14 वर्ष गुरुजी भी थे और स्वामी जी का आश्रम वलसार के पास में है ये गुरुकुल जहां पर चलता है उस समय ये ऐसा इतना बड़ा गुरुकुल नहीं था वहां पर प्रारंभ ही किया था महाराज जी ने कहा कि उन्होंने पहले मेरी गुजराती में कथा श्रवण की थी बद्री का आश्रम में नर्मदा तट पर बोलता थोड़ा कावड़े अच्छे हैं गुजराती में तो स्वामी जी ने कहा कि हमारे आश्रम में वो तो गुजरात में आश्रम है इसलिए गुजराती में आप कथा करना तो 14 साल पहले उन्होंने गुजराती में कथा सुनी और मैंने गुजराती में कथा की 14 साल पहले अब यहां की परंपरा है हमारे इस आश्रम की परंपरा है यद्यपि अधिकांश लोग अधिकांश यहां पर श्रोता गुजराती हैं परंतु परंपरा पड़ी हुई है यहां पर हिंदी की राष्ट्रभाषा की इसलिए चाहे बड़े से बड़े गुजराती के प्रवक्ता भी आते हैं तो यहां पर हिंदी में ही बोलते हैं बहुत अच्छी परंपरा है हम लोग पुनः आज उस परमात्मा के आविर्भाव के लिए उनकी अगवानी के लिए यहां पर आज उपस्थित हुए हैं तो राजा परीक्षित यहां पर सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि मन्वंतराणि सर्वाणि प्रयोक्ता सुतामि मे कहते हैं कि आपने अनेक मन्वंतरों का यहां पर वर्णन किया मन्वंतर का मतलब होता है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं ये हम लोगों को इसलिए परंपरा बोलनी पड़ती है कि हम लोग भूल न जाए हमारे पूर्वजों को एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं और एक दिन ब्रह्मा जी का कितना होता है आप उसकी कल्पना अगर करो, सहस्त्र युग पर्यंत, जो 1000 युग चतुर्युग, 1000 चतुर्युग कितने, 432,000 का कलयुग, उससे दुगना द्वापर, उससे दुगना त्रेता और उससे दुगना, बड़ी लंबी आयु होती है, और ऐसे मिलकर के ये एक युग हुआ। ऐसे चतुर्युग सहस्र होने के पश्चात ब्रह्मा जी का एक दिन पूर्ण होता है, उतनी बड़ी रात्रि होती है। अब उसकी कल्पना हम लोग केवल कल्पना ही कर सकते हैं, और उसमें हमारी थोड़ी सी आयु है। ऐसे 6 मन्वंतर बीत चुके हैं, और इस समय हम लोग वर्तमान में सप्तम मन्वंतर में हम लोग बैठे हुए हैं, और इसका नाम है वैवस्वत मन्वंतर। जब ब्राह्मण जब आपका संकल्प लेते हैं, संकल्प कराते हैं, उस समय मन्वंतर का भी वहां पर उल्लेख होता है। तो यहां पर राजा पूछते हैं, कहते हैं कि मन्वंतराणि सर्वाणि प्रयोक्तानि सुतामि मे, आपने बहुत से मन्वंतर आपने श्रवण कराए, और आपने पिछले मन्वंतर की कथा कही जो राजा सत्यव्रत जो व्रत धारण करते हुए और उनके ग्रहण में मत्स्य अवतार हुआ था, और मत्स्य अवतार होने के बाद में उस मत्स्य अवतार ने जो प्रलय काल में सप्त ऋषियों को संपूर्ण धन धान्य को मानव के संपूर्ण परंपरा को उस काल में उस ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी के उस काल में जब ब्रह्मा जी सोए हुए थे और प्रलय आया हुआ था, उस समय उन्होंने इसकी रक्षा की थी मत्स्य अवतार लेकर के भगवान विष्णु ने। अब हम कहते हैं कि हम इस समय हम लोग अपना जो मन्वंतर है इसकी बात श्रवण करना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि श्रीयताम मानव वंश प्राचुर्य न परंतप, अगर मैं तुमको ये मानव वंश सुनाता जाऊंगा तो सैकड़ों वर्ष लगेंगे और तब भी वो पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि 7 दिन तुम्हारे पास भी है और 7 दिन हम लोगों के पास भी है, इससे ज्यादा है नहीं। और राजा परीक्षित के पास तो 7 दिन और 7 रातें थी, हम लोगों के पास तो 2.5 दिन 2.5 घंटा सुबह का है और 2.5 घंटा शाम का है। संक्षेप में भी संक्षेप ब्रह्मा जी के जो पुत्र है वंश परंपरा, पहले जो मनु है वो स्वयंभू मनु है, प्रथम जो मनु हुए हैं स्वयंभू मनु हुए हैं, और उसके बाद में मनुओं की परंपरा चली, उसके बाद में सरोचित मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु, चक्षु मनु, और वर्तमान में वैवश मनु है। और वैवश मनु की उनकी कोई संतान नहीं थी, प्रारंभ में उनकी संतान नहीं थी। उन्होंने वशिष्ठ जी को ला करके उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए कोई अनुष्ठान करो। वशिष्ठ जी ने उनके लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान किया, और यज्ञ का जब अनुष्ठान किया उस समय यज्ञ के बाद में वहां पर जो संतान उत्पत्ति हुई वो पुत्र न होकर के पुत्री का जन्म हुआ, उसका नाम ईला रखा। जो वैवस्वत मनु श्राद्ध मनु है वो उनके पास में गए कि भगवान हमने तो पुत्र के लिए हमने अनुष्ठान किया था, ऐसे कैसे हुआ। वशिष्ठ जी ने विचार किया, उन्होंने ध्यान किया, उन्होंने कहा कि जो होता है जो यज्ञ में होता होता है उनके द्वारा संकल्प विपरीत होने के कारण वहां पर वो पुत्र का जन्म न होकर के पुत्री का जन्म हुआ, इसलिए कहा कि मैं पर पुनः वशिष्ठ जी महाराज ने अपने तपोबल से उस जो पुत्री थी ईला नाम की उसको पुत्र बना दिया, उसका नाम रखा सुदुम्न। ये हमारी परंपरा है, इसलिए कहा जाता है वो परंपरा है, और सुदुम्न नाम रखा, और सुदुम्न अब वो लड़की से लड़का हो गया। देखो हमारे कैसी परंपरा थी, पहले ये सब होता था, अब आजकल भी होता है ना, आप सब कभी कभी वो पेपर में पढ़ते हैं कि लिंग परिवर्तन होता है, ये तो अभी अभी शुरुआत हो गई। हमारे यहां तो पहले से होता था, पूरी लड़की को पूरा लड़का बनाया जाता था। जब एक दिन की बात है कि वो सुदम्न अपने घोड़े पर बैठ करके कुछ मंत्रियों को लेकर के वो वन में जाता है, और वन में जाने के बाद में घूमते घूमते एक वन में पहुंचता है, और उस वन में जाने के पश्चात उसको लगता है कि यहां पर तो सब अपने आप को देखते हैं कि जितने वहां पर सुदुम्न हैं उनके साथ में आए हुए सब लोग हैं, और उन्होंने देखा कि हम सब लोग कुछ बदल बदल जैसे गए हैं। तो वहां पर एक मेरू पर्वत के नीचे एक वहां पर ऐसा एक वन था, और वहां जैसे उन्होंने प्रवेश किया जितने वहां पर सुदुम्न थे उनके साथ में मंत्री थे वो सब के सब वहां पर उनका स्वरूप श्रीयु का हुआ। वहां पर सब के सब वो श्री रूप में आ गए। उन्होंने देखा कि हमारा ये क्या हो गया। जो कहते हैं कि वो जितने वहां पर पुरुष थे सब श्री हो गए, और यहां तक यहां कहते हैं कि वो जो वहां के घोड़े भी थे वो भी सब घोड़ी हो गए। सब लोग आए, वापिस आने के बाद में ये कहते हैं कि राजा पूछते हैं कि भगवान ये बात क्या है कि वहां पर ऐसी बात हुई। कहते हैं कि वो वन था वो भगवान शिव का था, और एक बार शिव वहां पर बैठे हुए थे और उनके साथ में गौरी बैठी हुई थी। उस समय कुछ ऋषि लोग वहां पर दर्शन के लिए आए, और जैसे ऋषियों को देखा तो थोड़ा सा संकोच हुआ भगवती को और उन्होंने भगवान से कुछ कहा होगा, और भगवान ने कहा कि हे भगवती, अब ऐसा होगा कि आने वाले समय में जो भी इस वन में आएगा उनका स्वरूप सबका श्री का बनेगा, इसलिए आगे की चिंता मत करो। और आगे वैसे ही वो वहां पर सुदुम्न जाता है और फिर से वहां पर वो श्री होता है। कहते हैं कि जो प्रारब्ध में लिखा होता है ना वो होके ही रहता है। ये बात फिर से वशिष्ठ जी के सामने रखी मनुजी महाराज ने, और मनुजी महाराज ने जब वशिष्ठ के सामने रखी उस समय पुनः एक बार भगवान शिव का ध्यान किया, और शिव का ध्यान कहा, और कहा कि हमारे यजमान को पुत्र होना चाहिए था। तो शिवजी ने कहा कि ऐसा है कि अभी पुत्र तो नहीं हो पाएगा, परंतु एक मास ये स्त्री रहेगा, और एक मास बड़ी ये समस्या वाली बात है। ये यही पर हुआ है, और उस प्रकार का उनका बोलते हैं कि उनकी भी वहां पर परंपरा चली, परंतु उनका बहुत वहां पर सम्मान नहीं हुआ। और एक पुत्र थे उनके मनुजी महाराज के, एक पुत्र जिनका नाम शरियाती था। पुरानी परंपरा पुरानी कथा है, इसलिए अपने को लगता है कि वो पता नहीं कहां से ये परंपरा आए, परंतु उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सुकन्या। शरियाती जो मनुपुत्र थे उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था सुकन्या। एक दिन शरियाती जी वन में गए, और वन में जाकर के उन्होंने अपना वहां पर शिविर लगाया, और शिविर लगा के संध्या के समय में उनके साथ में उनकी कन्या भी गई हुई थी, और बाल स्वभाव होता है वो अपनी सहेलियों के साथ में वो वहां पर वन में गई, और वन में जाने के बाद में देखा कि एक वहां पर बॉबी है जहां पर ये दीमक होते हैं, दीमक का जो घर होता है, और उसके अंदर कुछ ऐसी दिव्य कुछ रोशनी आ रही है, उसके अंदर से कुछ प्रकाश आ रहा है। उन लड़कियों को उन बच्चियों को लगा कि कुतूहल हुआ, और कुतूहल से उन्होंने एक तिनका लिया और दोनों को अंदर से ऐसा देखा कि है क्या ये। तिनका लेकर के काटे का तिनका लेकर के वहां एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते करते उनकी आंखें वहां पर टूट गई, वहां पर उनको दिखना बंद हुआ। देखा अंदर जाकर के वो वापस चले गए, और किसी को बताया नहीं। परंतु यहां पर कहते हैं कि उस समय सब जब वापस आए तो ऋषि को थोड़ा सा क्रोध आया, और उनके योग बल से जहां जितने वहां पर सैनिक आए थे उनका सबका मलमूत्र बंद हो गया, सबके पेट फूलने लगे। अब क्या करें, हुआ क्या, किसी का कोई अपराध तो नहीं हुआ। पूछा शरियाती जी ने कि किसी से अपराध तो नहीं हुआ। उनकी जो सुकन्या है उसने कहा कि हम लोगों से कोई भूल हुई होगी, हम लोग ऐसे ऐसे गए थे वहां पर, राजा सैरियाती जाते हैं और देखते हैं तो वहां पर बैठे हुए ऋषि हैं, परंतु अब वो देख नहीं पा रहे हैं। उनके क्षमा प्रार्थना की, उनसे क्षमा चाह करके उन्होंने कहा कि अब मैं अंधा हो गया हूं, अब मैं जीवन जीकर क्या करूंगा, अब न कहीं जा सकता हूं न कहीं आ सकता हूं। और उस समय उन्होंने कहा कि ऋषि ने कहा कि ऐसा करो, जिसने मेरा अपराध किया है तुम्हारी कन्या मेरे साथ में उसका विवाह कर दो। सरयाती ने कहा कि कन्या को ऐसा, उससे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। और सरयाती जी की जो पुत्री थी सुकन्या जिसका नाम है, उसका विवाह च्यवन ऋषि के साथ में हुआ। एक अति वृद्ध एक जो है जो च्यवन ऋषि जी है वो वृद्ध है और छोटी सी बालिका जो सुकन्या है सुकुमारी है उसका विवाह उनके साथ में हो जाता है। और सरयाती चले जाते हैं और जाने के बाद में बहुत काल तक वो जो सुकन्या है अपने ऋषि की सेवा कर रही है, फूल तोड़ के लाती है, जल लाती है, क्योंकि उनकी सेवा के लिए नियुक्त हुई थी। और एक दिन उसके भेंट इस वन में अश्विनी कुमारी से हुई। अश्विनी कुमार जो देवताओं के वैद्य है, पहले ये परंपरा थी कि जो देवताओं के वैद्य को उनको जो यज्ञ भाग नहीं मिलता था, जो सोमपान का भाग उनको नहीं मिलता था, तो उनकी भेंट हो गई सुकन्या से। सुकन्या ने कहा कि आप कौन हैं, और वैद्यराजों ने कहा, अश्विनी कुमार ने कहा कि हे देवी, तुम अभी तो लगती है कि सुकन्या हो, तो तुम यहां पर क्या कर रही हो। उसने सब अपना वृतांत कहा और कहा कि मैं ऋषि की सेवा में लगी हुई हूं, आप कौन हैं। तो कहे कि हम देवताओं के हम वैद्य हैं, आप क्या करते हैं। हमने कहा सब चिकित्सा करते हैं। कहे कि हम लोग सब चिकित्सा करते हैं। कहे कि आप हमारा एक काम करोगे। बोले अवश्य करेंगे। क्या कार्य है। हमारे पतिदेव की दृष्टि आ जाए तो बड़ा उत्तम होगा। वो अश्विनी कुमार आते हैं और उन्होंने एक कुंड में अनेक अनेक प्रकार की वहां पर जड़ी बूटी डाल दी, औषधि डाल दी, और सब तीनों की तीनों उस कुंड में प्रवेश करते हैं। और उनकी आंखें तो आ ही गई और उसके अंदर फिर से वो ऋषि में नव यौवन प्राप्त हुआ। और शायद उसी बात को लेकर के हमारे यहां पर आजकल अलग अलग कंपनियां क्या बनाती है। ऐसा तो कुंड था वहां पर, तो ये भट्टी में बना लेते हैं। और फिर वापस पुनः आई। और एक दिन की बात है, सरयाती राजा पुनः वापस आए उस वन में कि हमारी कन्या का क्या होता है, कन्या क्या कर रही है। देखते देखते देखा तो वहां पर पहले तो वो वृद्ध ऋषि थे और एक जो हमारी कन्या है वो तो एकदम नवयुवान के साथ में बैठी हुई है। उनको बड़ा क्रोध आया, हे सुकन्या तू क्या कर रही है, ये कौन है, तुम्हारा जो पति था वो कहां चला गया। उसने अपनी जब सब कहानी बताई तो सहसा विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अश्विनी कुमार आए थे और उनको मैंने एक आश्वासन दिया है कि हमारे पिता यज्ञ करने में, यज्ञाहुति देने में वो बहुत ही कुशल हैं, इसलिए मैं आप लोगों को मैं यज्ञाहुति देने के लिए उनसे कहूंगी, यज्ञ कराऊंगी और आपको यज्ञ भाग देवताओं के समान दे दूंगी। पुनः सरयाती जी ने यज्ञ किया, वहां पर इंद्र पहुंच जाते हैं और वहां पर इंद्र ने जब वहां पर हस्तक्षेप किया उस यज्ञ को समाप्त करने के लिए, तब सरयाती ने उस समय उसको उसी हाथ को वहां पर स्तंभित कर दिया। और उसके बाद में अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग मिलना प्रारंभ हुआ। इस प्रकार की ये प्राचीन अपनी परंपरा। और ऐसा जब हम लोग सुनते हैं ना तो लगता है कि कौन सरयाती होंगे, कौन उनकी कन्या होगी, हमसे उनका क्या मतलब। हमारा मतलब है, हमारा मतलब इसलिए है कि उसी परंपरा में अब आने वाले हमारे आने कौन आने वाले हैं, भगवान आने वाले हैं जिनको हम कन्हैया कहते हैं। तो उनका थोड़ा सा भजन हो जाए फिर आगे चले।
हेलो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान मंजिल मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब सरकार ही नहीं है, किसी और सरकार भी नहीं है, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, तेरी कृपा गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, करते हो तो मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी से सब काम हो रहा है,
मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है। पार पाओ कैसे, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा बार बार कैसे, टूटी हुई वाणी गुण गान गाओ कैसे, टूटी हुई वाणी गुण गान
सब ये कमाल हो रहा है, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है।
करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, ये कमाल हो रहा है,
सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है,
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
वैवस्वत मनु को पहले पुत्र के लिए अनुष्ठान करना पड़ा, वो ऐसे ही चिंतन कर रहे थे, विचार कर रहे थे, तब तक उनको एक छींक आई, और छींक आने से वहां से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, उसका नाम है इक्ष्वाकु। हमारी बड़ी सुंदर परंपरा है, इक्ष्वाकु ये सम्राट हुए, उनसे एक परंपरा चली, उनसे रोहित हुए, उनसे हरित हुए, बाहुक हुए, और बाहुक दीर्घ वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, उन्होंने राज्य का शासन किया, और अंत में वो चले गए तपस्या करने के लिए। उनकी पत्नी को जब उनका देवसान हुआ, उनका शरीर विलीन हो गया, उनकी पत्नी थी उस समय वो गर्भवती थी, और वो सती होने के लिए जब गई तो उनके यहां पर एक और ऋषि थे, और उन्होंने कहा कि तुम सती मत होना, तुम्हारे गर्भ में बालक जन्म लिया हुआ है, बालक आया हुआ है, इसलिए उन्होंने उसको रोक दिया। परंतु वहां पर उनकी कुछ सौतने थी, उनको वो ठीक नहीं लगा, और उन्होंने उनको जहर दे दिया, विष दे दिया, इसको गर बोलते हैं। परंतु बालक की मृत्यु नहीं हुई, और उस विष के साथ में, उस गर के साथ में उसका जन्म हुआ, इसलिए उसका नाम सगर हुआ। घर सहित जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु नहीं हुई, वो सगर हुआ और सगर का अनेक वंश चला और सगर के 60,000 पुत्र हुए। तो होने पड़ेंगे ना, इतना तो सृष्टि आगे कैसी बढ़ेगी। कि हमारे जैसी वैसी थोड़ी थी उसी सृष्टि, उस समय तो संकल्प की सृष्टि थी, जितने चाहे उतने आप कर लो। 60,000 पुत्र उनके सगर के, और उन्होंने एक बार सोचा कि अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। सगर ने विचार किया कि अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, और अश्वमेध यज्ञ करने के लिए अनेक अश्वमेध होने के पश्चात वो जो अश्वमेध का ये जो उसका अश्व है उसको इंद्र ने उसको चुरा लिया। तो हमेशा इंद्र का यही काम है कि कोई भी अश्वमेध करता है कि हमारा पद नहीं लेना चाहिए। ये तो परंपरा तब से अब तक चली आ रही है, अभी है कि नहीं है, कि हमारी गद्दी बची रहनी चाहिए। वो परंपरा है ना, उसको कोई छोड़ेगा कैसे। उस समय इंद्र को लगा और इंद्र ने उस अश्व को जाकर के एक जगह बांध दिया जहां पर कपिल भगवान का आश्रम था। कहा यहां पर सागर मिलता है, उस समय उसको गंगा सागर नहीं बोलते थे, उस समय गंगा नहीं थी ना, वहां पर केवल सागर था, और वहां पर कपिल भगवान की कुटिया थी, वहां जाकर के बांध दिया। और जब उस अश्व को ढूंढने के लिए सब लोग निकले, 60,000 थे, उन्होंने सोचा कि यहां पर बांधा होगा वहां बांधा होगा, और वो उस समय धरती को खोदते गए, कि धरती में कहीं नहीं गड़ा हो, धरती को खोदते गए, और उस खोदते खोदते वहां पर समुद्र हो गया, जो हम लोग बंगाल की खाड़ी बोलते हैं ना, वो सगर पुत्रों ने खोदी हुई है। देखा तो वहां पर जाकर के देखा तो घोड़ा तो वहां पर बंधा हुआ है, अश्व तो वहां बंधा हुआ है, और उन्होंने कहा कि इसी ऋषि ने, ये जो बैठे हुए महात्मा है, इन्होंने इस घोड़े को ला करके यहां पर बांध दिया ऐसा लगता है। और वहां पर उन्होंने उस पर मारने के लिए, जैसे ही वो ऋषि की आंखें खुली वहां पर देखा तो 60,000 यहां पर मारने के लिए उदित थे। उन्होंने एक ही दृष्टिपात किया और वहां सब के सब वो 60,000 सगर पुत्र भस्मीभूत हो गए। ये पता लगा राजा सगर को, अब उनकी मुक्ति कैसे हो, इसका क्या उपाय है। उनका एक जब सब चले गए वहां पर, और सगर ने पूछा कि महाराज इनसे भूल हो गई, इसकी मुक्ति का साधन आप बताएं, तो कपिल भगवान ने कहा कि एक ही मुक्ति का उपाय है, गंगा जी का जल यहां पर आ जाए तो इनकी मुक्ति संभव है, और वो गंगा जी अब धरती पर तो अभी है ही नहीं, इसलिए तपस्या करनी पड़ेगी। और तपस्या करने के लिए उन्होंने कहा कि अनेक लोगों ने तपस्या की, और सगर की दूसरी पत्नी के एक पुत्र थे, उनके किसी ने उनका नाम था, और उनके पुत्र थे असमंजस, असमंजस उनका पुत्र का नाम था, और वो उन्होंने उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था अंशुमान। ये पुरानी परंपरा, अंशुमान थे। अंशुमान ने विचार किया कि मैं तपस्या करूंगा, और मैं तपस्या करने के बाद में गंगा जी को यहां पर धरती पर लाऊंगा, तो स्वर्ग से आएगी जो गंगा, उनको ला करके और हमारे जो पूर्वज है उनका मैं उद्धार करूंगा। परंतु हम विचार तो करते हैं परंतु हो नहीं पाता है, और इसी प्रकार उनका भी देह विलय हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में दिलीप आए, उन्होंने भी तपस्या की, पहले राज्य किया फिर तपस्या की, और उनको भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। आवश्यक नहीं कि सफलता प्राप्त हो, परंतु नित्य कर्म करते रहने से कोई ना कोई सफलता प्राप्त होती है। और उनका एक पुत्र हुआ जिसने जिसका नाम था भगीरथ, और भगीरथ ने तपस्या की, और भगीरथ ने तपस्या की, और करने के बाद में वहां पर गंगा जी उस पर भगीरथ पर प्रसन्न हुई। परंतु दो प्रश्न डाल दिए, ये भगीरथ कोपि धारिता वेगम पतंत्या में मही तले, हे भगीरथ मैं आ तो जाऊंगी परंतु मेरा वेग कौन धारण करेगा, उसके लिए कोई ना कोई प्रबंध करो। अन्यथा भूतलम भूतवा नृपयासे रसातलम, मैं रसातल में चले जाऊंगी, तुमको कोई उसका उपयोग नहीं होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि मैं आ भी जाऊं तो किम चाहम न भुवम यास्य, मैं जब आऊंगी तो लोग मेरे में पातक धोने आएंगे। क्या करेंगे, किस लिए जाते हैं हम लोग? गंगा पापम, हम लोग अपने पाप धोने के लिए तो गंगा जी में जाते हैं ना। कहते हैं कि सब लोग आएंगे और पाप मेरे में छोड़ जाएंगे तो मैं तो अपवित्र हो जाऊंगी, मैं पापी तो मैं बन जाऊंगी, उसका कोई उपाय ढूंढो। विचार किया कि गंगा को कौन धारण कर सकता है, तो एक केवल सदाशिव है, एक शंकर है भगवान। शंकर की तपस्या प्रारंभ की भगीरथ ने, जाकर के घोर तपस्या की और घोर तपस्या के बाद में भगवान शिव प्रकट हुए। अब दूसरी बात कही कि उनको पता था कि संत होते हैं जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, ब्रह्म के साक्षात रूप होते हैं। तो भगीरथ राजा ने कहा कि जो दूसरी आपकी समस्या है, जो पाप धोएंगे, साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मनिष्ठा लोक पावनः, जो यति है सन्यासी है ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसे जब आपको स्पर्श करेंगे, आपके अंदर स्नान करेंगे, तो आपके भीतर जो पड़े हुए पाप है वो समस्त भस्मभूत हो जाएंगे। इसलिए आपको दोनों बातों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे साथ भगवती आप चले, हमारे पूर्वजों का उद्धार करना बहुत आवश्यक है। तो गंगा जी ने विचार किया कि मैं तो जिसको भी जहां पर भी मैं प्रभावित हो जाऊंगी उसके सहित मैं पाताल लोक चली जाऊंगी। भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव की आराधना करने के बाद में भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं, गंगा जी को आने दो। और भगवान शिव वहां पर खड़े हो गए और गंगा जी वहां से जोर से आई, उसको लगा कि आज मैं शिव जी को भी लेकर के पाताल लोक चले जाऊंगी। और गंगा जी का प्रभाव ऊपर से आया और भगवान शंकर ने अपनी जुटाओं को कड़ाह की तरह बना दिया। इसलिए अपने यहाँ पर शिव तांडव में कहते कि जटा जटा कटा रम रम भ्रम निलिम्ब निर्जरी डोल में जीवल्लनी विराजमान मुरली धगत 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 किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण मम। अंग विभूति गले मुदमाला शेष नाग लिपटायो बापो तिलक बाल चंद्रमा नंद कर लख जगायो। अंग विभूति गले मुदमाला शेष नाग लिपटायो बापो तिलक बाल चंद्रमा नंद कर लख जगायो। नगर में जोगी आया यशोदा के घर आया, ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। और न कंचन माया तेरे गोपाल का दर्श करा दे मैं कैलाश से आया। वंदे देव उमापति सुर गुरु वंदे जगत कारण वंदे पन्नग भूषण मृगधरमो वंदे पशूनां पति वंदे
सूर्य शशांक वाहनि नयनौ वन्दे मुकुन्द प्रियौ वन्दे भक्तजना श्रयौ च वरदौ वन्दे शिवौ शङ्करम् ले भिक्षानुकुली नगराने कञ्चन काल भरायो ये लो भिक्षा जा आसन पे बालक मेरो अगरायो नगर में जोगी आया यशोदा के घर आया मन से बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ चाहिए तेरी दौलत दुनिया और न कंचन माया तेरे गोपाल का दर्श करा दे मैं कैलाश से आया अतित गिरी समस्यात कजलो सिंधु पात्रे सुर कर वर्षा लेखनी पत्र लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानाम् ईश पारं नयाति ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और न कंचन माया तेरे गोपाल का दर्श करा दे मैं कैलाश से आया पंच बेर परिक्रमा करके श्रृंगी नाद बजायो सूरदास बलिहार कन्हैया आज बुजुर्ग किए जायो नगर में योगी आया तेरा नाम भोलेनाथ
जी का प्रवाह ऊपर से वेग से आया और शिव जी ने अपनी जटाओं को कड़ाह की तरह जटा कटा और उसमें गंगा जी प्रवेश कर गई। सोचा था कि शंकर जी को भी लेकर के पाताल जाऊंगी परंतु वहीं घूमने लगे भ्रमित हो गई। अब कहां जाऊं उस जटाओं से कहां निकलो उसको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है और वहीं भ्रमण कर रही है गंगा जी कहां जटाओ में भगवान शंकर के। भगीरथ राजा ने विचार किया कि गंगा जी ऊपर से तो आई है स्वर्ग से तो आई है परंतु नीचे धरती पर अभी तक नहीं आई इसका क्या कारण है। बहुत समय तक उन्होंने प्रतीक्षा की और पुनः भगवान शिव की प्रार्थना की कि भगवान शिव के पास जाकर के भगवान शिव पुनः प्रसन्न हुए कि बोलो भगत आप क्या चाहिए। बोले कि भगवान हमने पितरों को उद्धार के लिए हमने गंगा जी के लिए प्रार्थना की थी और आपको उसको धारण करने के लिए मैंने प्रार्थना की थी परंतु गंगा जी अभी तक नीचे आई नहीं है। कहा कि वो तो मेरे जटाओं में ही घूम रही है। लेकिन महाराज उसका जो उपाय तो करे गंगा जी को आप नीचे छोड़े। बोले पूरी गंगा जी को तो मैं नीचे नहीं छोड़ूंगा, एक धारा केवल छोड़ूंगा। भगवान शंकर ने एक धारा उस गंगा जी की छोड़ दी और गंगा जी को लेकर के भगीरथ जी महाराज चलते हैं आगे आगे। परंतु गंगा जी को थोड़ा सा वहां भी अभिमान हुआ और एक ऋषि बैठे हुए थे नीचे जिनका नाम जान्हू नाम था, उन्होंने गंगा जी को पान कर लिया। अब गंगा जी को लगा कि यहां तो बड़े बड़े धुरंधर हैं। फिर से वो जान्हू ऋषि की भी प्रार्थना की कि भगवान गंगा जी को आप छोड़े। गंगा जी को उन्होंने अपने जंघा से फिर से वापिस छोड़ा, इसलिए एक गंगा जी का नाम एक जाह्नवी भी पड़ गया। इसी भगवती आगे चलते चलते भगीरथ महाराज आगे चल रहे हैं और जहां पर भगीरथ के पूर्वज का अस्थि पड़ी हुई थी, जहां पर राख पड़ी हुई थी, वहां तक पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद में सबके सब लोग वहां से जितने 60,000 जो सगर पुत्र थे वहां पर, जैसे वहां पर सभी सबका सबका उद्धार हो गया और इसीलिए गंगा जी हमारे यहां पर आ गई। देखो तपस्या किसने की, फल हम लोगों को मिल रहा है। हम लोग है कि नहीं बड़े भाग्यवान। हमने गंगा जी को हम लेने जाते तो कहां ब्रह्मलोक में जाते। सब लोग प्रातःकाल हम लोगों ने श्रवण किया ना, जब वामन भगवान का एक चरण कहां गया था, ब्रह्मलोक में गया था। और ब्रह्मा जी ने जिस कमंडल से उनकी पूजा की थी वो ब्रह्म जल, वही तो गंगा जी है। ऐसा पवित्र गंगा जी जो हमारे इस धरती पर अवतरित हुई है, हमारे भारत में अवतरित हुई है। परंतु जो गंगा जी की जो शंका थी ना, पहले तो संतों ने उसको निर्मल कर दिया था, परंतु अब धीरे धीरे उस गंगा जी को वो शंका बिल्कुल उसकी सिद्ध हो रही है कि अब हमको दूषित लोग करेंगे और हम लोगों ने गंगा जी को कर दिया है। जमुना जी का तो कुछ पता ही नहीं है। हम लोग वैष्णव गंगा जी के लिए जाते हैं मथुरा में, परंतु वहां पर जमुना जी दिखती नहीं, फिर भी हमारा श्रद्धा भाव होता है। हम वहां से जल लेते हैं, अपने मस्तक पर डालते हैं। ये उनकी जो शंका थी वो निराधार नहीं थी, इसलिए आजकल के लोग सोचते हैं कि गंगा जी को निर्मल करना चाहिए। और अच्छी बात है, कोई शासक है वो विचार करता है कि हमारे संस्कृति के बारे में, बड़ी बात है। जिन लोगों ने उसको दूषित किया उनको किस नरक में जाना पड़ेगा पता नहीं, परंतु जो उसको निर्मल करेगा वो कितने दिन तक वो स्वर्ग में रहेगा, कितने दिन वो स्वर्ग का सुख भोगेगा, उसकी भी गिनती नहीं है। इसलिए जब हम गंगा जी में जाए तो पवित्र होने के लिए जाए, न कि वहां पर स्नान करने के लिए। वहां पर हम निर्मल होने के लिए नहीं जाना चाहिए। तीर्थ में हमें जाना चाहिए किस लिए, हमें पवित्र होने के लिए जाना चाहिए, हमें वहां पर निर्मल होने के लिए जाना चाहिए, हमें वहां पर शुद्ध होने के लिए जाना चाहिए, अपने पातक को धोने के लिए जाना चाहिए, परंतु तीर्थ को पवित्र रखना चाहिए। ये हमें हम लोगों को ये सीखना चाहिए। और इस प्रकार गंगा जी आई और गंगा जी आने के बाद में वो सब सगर पुत्र वहां पर स्वर्ग को वहां पर प्रस्थान कर गए। और उसी परंपरा में खटवांग नाम के राजा हुए। और खटवांग नाम के राजा एक बार युद्ध के लिए, आप लोगों ने पहले भी सुना, एक बार युद्ध के लिए देवताओं ने उनको बुलाया और युद्ध समाप्त हो गया। और खटवांग नाम के जो राजा थे उन्होंने उनको कहा कि हे आप चले जाओ। खटवांग जी ने पूछा कि अबे हमारी आयु कितनी रही। देवताओं ने कहा कि 2 घड़ी। तो 2 घड़ी में आप क्या वैभव प्राप्त करूंगा। भगवान का नाम लेते लेते वहां पर उनको ब्रह्म की प्राप्ति हुई। और उनके जो पुत्र थे खटवांग के जो पुत्र थे वो दीर्घबाहु थे। और उनके जो पुत्र थे, यहां पर कहते हैं कि तस्मात् प्रसुस्रवा, उनके आज हुए अजस्तसो महाराज तस्मात् दशरथो भव। अब परंपरा आ रही है आगे की, उसकी प्रकार वहां पर दशरथ जी तक उसकी परंपरा आती है। और वहां पर भगवान ने विचार किया कि एक अवतार ग्रहण करना चाहिए। और वहां पर भगवान ने विचार किया तुलसीदास जी कहते हैं कि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनोज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान ने विचार किया कि अब मुझे ऐसा अवतार लेना चाहिए और उसी समय तच्चापि भगवानेश साक्षात ब्रह्ममयो हरि अंशांशेन चतुर्धात पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः। भगवान ने विचार किया और भगवान ने अवतार ग्रहण किया, क्या राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञता संज्ञका। भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव होता है और जब सुंदर कथा आई है रामायण में, परंतु जब भगवान प्रकट होते हैं तो तुलसीदास जी ने जो वहाँ पर वर्णन किया है, हम लोग भी उसका वर्णन करें और जो यजमान है वो तो भगवान का यहाँ पर पूजन करें।
नवमी तिथि मधुवास पुनीता सुकल पसन भी जित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुवास पुनीता सुकल पसन भी जित हरि प्रीता। मध्य दिवस आतशी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्याही पारे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्याही पारे। हर्षित वतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारे। हर्षित वतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारे। लोचन अभिरामा कनु घन श्यामा निज आयुज बुधकारे। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्याहितकारी। ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम। कई दुई कर जोड़ी और स्तुति कौड़ी के विधि करो नंदा। माया गुण गाना सीत यमाना वेद पुराण भनंदा। करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावहि श्रुति मनंदा। सो महित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्री कंता। कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममूर शोभासी कह उपवासी सुनत धीर मति धीर न रहे। उपजा जब जाना प्रभु मुझ पाना चरित बहुत विधि कीन जहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाए
जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्यानिकारी महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप माता पुनि बोली गोमति डोली सज हो नाथ यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय सीला यह सुख परम रूपा सुनी बचन सुनारोदन गाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावई हरि पद पावई तेर पर ही भवभूपा मैं प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी विप्रदैनु सुर संसहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल
ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम
राजा राम 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 सीता राम राम राम
राम राम सीता राम राम राम
राजा राम 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 सीता राम राम राम
राजा राम 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 सीता राम राम
राम सीता राम राम सीता राम तुम्हारी जय जय हो
सीता राम
तुम्हारी
जय जय हो
सीता राम तुम्हारी जय जय हो
सीता राम तुम्हारी जय जय हो
हनुमान तुम्हारी जय जय हो
भगवान तुम्हारी जय जय हो
हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम
बोलो रामचंद्र भगवान की जय। पूर्ण परब्रह्म भगवान श्री राम का प्रागट्य होता है, उनके साथ में भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी भी अवतरित होते हैं। राजा दशरथ को बड़ा आनंद होता है, आनंद आनंद होता है। ये उत्तर में आयु के लगभग लगभग उत्तर में पुत्र की प्राप्ति हुई है, इसलिए बड़ा आनंद है। परंतु आनंद बहुत देर तक नहीं टिकता है। थोड़े से बड़े होते हैं भगवान श्री राम लक्ष्मण, और वहां पर गुरुदेव पधारते हैं विश्वामित्र, और विश्वामित्र आकर के कहते हैं कि ये पहले उनकी बड़ी वहां पर पूजा की, उनका सम्मान किया, और दशरथ जी ने पूछा कि भगवान आपका शुभ आगमन हो गया है, आपको मैं क्या अर्पण करूं, आज मैं बड़ा आनंदित हूं, मेरे बड़ा आनंद है आपको मैं क्या अर्पण करूं। विश्वामित्र कहते हैं कि हे राजन, आपकी परंपरा है। क्या परंपरा है? बोलते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, वचन में बांध दिया विश्वामित्र जी ने। ऐसा न कहे कि बाद में दशरथ जी ना कहे, इसलिए कहा कि आपकी तो परंपरा है, आपकी रघुकुल रीत है, इसलिए आप जो वचन देंगे उसको पूर्ण करेंगे, ऐसी मुझे बिल्कुल आशा है। कहा कि भगवान जो मांगेंगे, मेरा राज्य मांगेंगे राज्य दे दूंगा, जो मांगेंगे वो मैं आपको प्रदान करूंगा। बोले उसकी मुझे आवश्यकता नहीं, वो तो सब छोड़ छाड़ के आ गया हूं। कि तुम्हारे यहां पर जो अभी अभी जन्म हुआ, जिनका अवतार हुआ है, अभी थोड़े बड़े हो गए हैं, इनको मुझे चाहिए, ये राम और लक्ष्मण। जैसे ही ये बात सुनी, उस समय राजा दशरथ जी को ऐसा लगा कि कोई वज्रपात हो गया। उस समय कहा कि भगवान ये आप क्या मांग रहे हैं? उन्होंने कहा कि आपने वचन दिया है, और जैसा वचन दिया था, राजा दशरथ को भी पता था कि मैं गुरुपुत्रों को अपने गुरुजी के पास में अपने पुत्रों को दूंगा तो उनका जो है भविष्य निखरने वाला है, उनके भविष्य में कोई विद्या ग्रहण होने वाली है, और इसलिए उनको प्रदान किया। और वहां से उनको, क्योंकि उनका यज्ञ चल रहा था, और उनको लेकर के चलते हैं। परंतु एक जाते जाते रास्ते में एक ताड़का नाम की राक्षसी वहां पर खाऊं खाऊं कहने लगी। उस समय कहते थे कि उस समय बड़ी उत्पात करने वाले। भगवान को कहा विश्वामित्र जी ने कि अभी अपना कार्य प्रारंभ करो। ताड़का वध, पहले सबसे पहले ताड़का वध होता है। ताड़का का मतलब है कि जो अज्ञान है, जो अविद्या है, जो प्रकाश को अवरोध करती है, ज्ञान को अवरोधक है, उसका नाश करना है। और वो भगवान ही कर सकते हैं। संत ने, विश्वामित्र जी ने कहा कि अब हमारे जो यज्ञ है उसमें जो बड़े बड़े राक्षस आते हैं और उनको वो विघ्न बाधा पहुंचाते हैं, इसलिए ऐसा करो यज्ञ की रक्षा करो। तुम्हारा काम ही है यज्ञ की रक्षा करना। भगवान को यज्ञ की रक्षा के लिए वहां पर स्थापित कर दिया। और विश्वामित्र जी महाराज अंदर यज्ञ कुंड में आहुति दे रहे हैं। उनको पता है कि ये साक्षात परब्रह्म है। अभी तक तो आहुति देते थे यज्ञ में, अभी भी यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, परंतु आहुति का वहां पर हाथ में है। और आहुति दे करके भगवान की तरफ देखते हैं और यज्ञ कुंड में आहुति देते हैं। ऐसा यज्ञ होता रहा और निर्विघ्न पूर्वक वहां पर यज्ञ हुआ। वहां पर दो राक्षस आए भी थे वहां पर, परंतु उनको भी एक को तो एक बिना नोक के बांध से एक को तो वापस भेज दिया और एक को वहीं पर समाप्त कर दिया। यज्ञ संपन्न हुआ। और यज्ञ संपन्न होने के बाद में विश्वामित्र जी ने कहा कि अब वो थोड़ा सा भ्रमण करते हैं, और उनको धनुर्विद्या का वहां पर प्रशिक्षण दिया। जब धनुर्विद्या का प्रशिक्षण दिया और उसी समय एक घटना घटती है, घटना ये घटती है कि मिथिला से एक आमंत्रण पत्र आता है और उसमें लिखा जाता है कि जो हमारी कन्या है जिसका नाम विदेही है, वैदेही है, उसका स्वयंवर होने वाला है। ये आमंत्रण किसको आता है? विश्वामित्र जी के पास नहीं आता है, राम जी के पास नहीं आता है। और विश्वामित्र जी पूछते हैं कि देखो राम, ये आमंत्रण पत्र आया है, चलना है? बोले गुरुदेव आपके साथ में, आप जहां पर हमको ले जाएंगे वहां पर चलेंगे। और भगवान श्री राम लक्ष्मण पहुंच जाते हैं, कहां? मिथिला में पहुंच जाते हैं। और वहां पर सीता स्वयंवर के लिए वहां पर बड़ा भारी एक धनुष रखा हुआ है, और जो इस धनुष को प्रत्यंच चढ़ाएगा उसके साथ में सीता का विवाह होगा। ये वहां का नियम था। बड़े बड़े राजे महाराजे आए हुए थे वहां पर, और कहते हैं कि जैसे एक दिन पहले ही सीता मैया अपने उपवन में उनका कार्यक्रम था वहां पर देवी की पूजा करने का। इधर भगवान को पता था कि जो हमारी होने वाली जो हमारी है ही अभिन्न, जो महामाया है मेरी है, परंतु कल उस कहां आने वाली है, मंदिर में दर्शन करने के लिए आई है, और ऐसे तो जा नहीं सकते क्योंकि सेवा में लगे हुए विश्वामित्र जी से। और विश्वामित्र गुरु जी से कहते कि भगवान एक आपसे एक आज्ञा लेना चाहता हूं। बोले क्या? बोले ये जो लक्ष्मण है ना, लक्ष्मण, इसको ये नगरी देखने की इच्छा है। विश्वामित्र जी समझ जाते हैं कि इनको कौन सी नगरी देखनी है। और भगवान श्री राम और लक्ष्मण निकलते हैं उस वाटिका की तरफ जहां पर देवी का मंदिर है, और वहां पर वो माया जिसकी वो है, जिस परमात्मा की वो अभिन्न है, ऐसी जगत जननी सीता मैया वहां पर आती है और वहां पर दर्शन करने के लिए। और दूर से वहां पर एक दूसरे का नैनों से ही वहां पर एक दूसरे से परिचय हो जाता है कि अब तुम प्रकट होकर के यहां आई हो। और भगवान श्री राम वहां पर, और प्रातः काल हो जाती है, सब तैयार हो जाते हैं, और दूसरे दिन धनुष यज्ञ है। बड़े बड़े राजे महाराजे आए थे और वहां पर धनुष उठाने के लिए सीता मैया ने पूरे तीनों लोगों का जो भार था उन्होंने अपने संकल्प से उस धनुष में रख दिया था। इसलिए कोई नहीं उठा पाया वहां पर, कोई हिला ही नहीं पाया वहां पर। फिर बड़े बड़े राजा वहां पर बैठे, उस समय जनक जी को थोड़ा सा आवेश आया और उन्होंने कहा कि शायद लगता है कि क्षेत्रियो से ये भूमि खाली हो गई है। और उस समय कुछ लक्ष्मण जी क्रोधित होते हैं और फिर लक्ष्मण जी को वहां पर बिठा शांत करते हैं और फिर वहां पर इशारा होता है विश्वामित्र जी की तरफ से कि हे राम अब तुम उठो। और भगवान श्री राम उठते हैं और वो जो धनुष वहां पर रखा हुआ था ऐसे उठाते जैसे कोई बच्चा छोटी सी लकड़ी उठाता है और उस प्रकार उन्होंने उठा करके उस पर जैसे प्रत्यंचा चलाने के लिए उन्होंने उसकी रस्सी खोली खींची उसी समय धनुष वहां पर भंग हो जाता है। धनुष भंग हो गया और वहां पर सब जगह वहां पर उत्साह का वातावरण होता है और उसी समय जयमाला लेकर के भगवती आती है। परंतु भगवान विचार करते हैं कि थोड़ा सा अभिनय तो करना चाहिए ना, भगवान थोड़े से ऊंचे हैं ऐसे रामायण में कहा है, भगवान श्री राम थोड़े से ऊंचे हैं ऊंचाई में और भगवती नीचे हैं, होता है यही होता है, यही ये क्रम है, यही परंपरा है, यही प्रकृति है। और जय मरा लेकर के सीता मैया खड़ी है, भगवान थोड़े से ऊंचे हैं तो हाथ नहीं पहुंच रहा है और न भगवान नीचे झुक रहे हैं, बड़ी समस्या। जब तक वरमाला नहीं होगी तब तक ये आगे कार्य बढ़ने वाला नहीं है। और वहां बैठे बैठे विश्वामित्र जी देख रहे हैं कि इस कार्य को, उन्होंने इशारा किया लक्ष्मण जी को कि देखो अब तुम जाओ, अब तुम्हारा काम है। और वहां जाकर के लक्ष्मण जी जाते हैं और अपने बड़े भैया का चरण स्पर्श करते हैं और आशीर्वाद देने के लिए भगवान श्री राम थोड़ा सा नीचे झुकते हैं और सीता मैया उसी समय उसी अवसर का लाभ उठा करके उनके गले में वरमाला डाल दिए, सब जगह तालियां ताली बजे, सब आनंद आनंद हो गया, आनंद हो गया। और उसके बाद में वहां पर विवाह तो हुआ नहीं, परंतु उस समय ये हुआ कि विवाह होना चाहिए। जनक जी महाराज ने कहा कि ऐसा है कि एक ही विवाह से तो काम थोड़ा अधूरा सा हो जाएगा, परंतु हमारी दूसरी जो तीन कन्याएं हैं उनका विवाह कहते हैं कि लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, भरत जी का मांडवी के साथ में और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ में उनका विवाह संपन्न होने जा रहा है। विवाह हुआ और विवाह होने के बाद में दोनों की दोनों सबके सब चारों भाई अपने ग्रह के लिए अपने अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। उसके पहले वहां राजा दशरथ आते हैं, अयोध्यावासी आते हैं और उसके बाद में थोड़े दिन के बाद में ये समय देवताओं ने विचार किया कि अब भगवान श्री राम अगर अयोध्या में रह करके राज्य करेंगे उस समय तो जगत का कल्याण होने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने कुछ रचना रची। दशरथ जी ने एक दिन देखा कि मेरे बाल कुछ सफेद हुए हैं, मेरी वृद्धावस्था आई है और उसी समय उन्होंने विचार किया कि शुभच शीघ्रम अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भगवान मैं भगवान श्री राम को मैं राज्याभिषेक करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि इसको देरी मत करो, पता लग गया कि राज्याभिषेक होने वाला है, देवताओं को पता लगा और उस राज्याभिषेक में तैयारी होने लगी और वहां पर कई कई जिसका पुत्र भरत है उसने पहले वचन लिया था राजा दशरथ से कि मेरा ही पुत्र राज्य बनेगा, राजा बनेगा। बड़ी वो भी प्रसन्न हो गई, कई कई भी प्रसन्न हुई, परंतु उसके यहां पर एक दासी थी जिसका नाम हम लोग जानते हैं ना, मंथरा। उसने कहा और उसको देवताओं ने उसी को अपना निशान अपना हथियार बना लिया और देवताओं ने कहा कि इसके सिवाय अब हमारा कोई कार्य करने वाला नहीं। और मंथरा ने देखा सुना और मंथरा गई राजा के उस रानी के महल में, कहा कि तुमको कुछ पता है? कहा कि क्या पता नहीं है कि राम का राज्य अभिषेक होने वाला है। कई कई बड़ी प्रसन्न हो गई, अरे राम का राज्याभिषेक होने वाला है तो बड़ी आनंद की बात है। और अपने गले से सुंदर हार निकाल करके वो मंथरा को देने लगी और मंथरा से उसका स्पर्श हो गया। जो मंत्रा के मन में जो बातें थी वो सब कई कई के मन में आ गई और कई कई ने वहां विचार किया कि ये तो मेरे पुत्र को अभिषेक होना चाहिए था और राम का अभिषेक कैसे होगा। उस समय वो कोप भवन में चले जाती हैं और कोप भवन जाने के पश्चात फिर वहां पर राजा दशरथ आते हैं और दशरथ को कहती है कई कई कि आपको पता है कि मेरे दो वर लेने बाकी हैं। रामायण की कथा बहुत बार यहां भी पहले सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अनेक बार तुमने रामायण सुनी होगी, हम लोगों ने भी अनेक बार सुनी है। कहते हैं कि दो वर बाकी है, वो दो वर मुझे चाहिए। बोले जो मांग लो कोई बात नहीं है। बोले एक वर ये है कि मेरे पुत्र को भरत को राज्याभिषेक करो, उसको राजा बनाओ। बोले इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा वर यह है कि 14 वर्ष के लिए ये राम को वनवास भेज दो। ये बात सुनते ही राजा दशरथ मूर्छित हो गए और मूर्छित होने के बाद में उसने कहा कि दूसरा कुछ भी मांग लो, ये मत मांगो, क्या कि देना है तो दो, नहीं तो तुम्हारा वचन तुम्हारे पास में रहने दो। वहां भी याद दिलाते हैं कि तुम्हारा जो कुल है। और उस समय राम आते हैं और राम आने के बाद में उन्होंने ये दशा देखी, उन्होंने कहा कि मैं अभी वनवास चला जाता हूँ। और भगवान राम वन की ओर चलते हैं और भगवान राम वन में जाते हैं और 14 वर्ष के लिए वन में जाने के बाद में आप लोगों ने पता है कि पहले चित्रकूट में निवास करते हैं, सभी संतों को ऋषियों को वहां पर प्रसन्न करते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे हम लोग की ओर आते हैं उत्तर से, नासिक में आकर के पंचवटी में आकर के निवास करते हैं। भगवान को भगवतीय कार्य करना है, भगवान ऐसे भ्रमण नहीं करते हैं टिकट ले लिया और कहीं यूरोप जाकर के आया, ऐसा नहीं है। भगवान का कोई कर्तव्य होता है। भगवान ने विचार किया कि पहले जो हमारे जय विजय थे उनका तो मैंने वध किया था, उनको तो मुक्ति दिलाई थी, अभी रावण और कुंभकर्ण उनका दूसरा जन्म हुआ है, इसलिए भगवान श्री राम कहाँ आए, नासिक में आए, पंचवटी में आए और उन्होंने वहां करके फिर वहां पर वो जो रावण है उसने सुना कि सीता जी आई हुई है और सीता के हरण के लिए वहां पर कुछ इस समय का दृश्य होता है, एक स्वर्ण का मृग आता है और स्वर्ण का मृग सीता जी देखती है और सीता जी देखने के बाद में उसके मन में होता है कि स्वर्ण का मृग मुझे प्राप्त हो जाए और सीता की रक्षा के लिए वहां पर लक्ष्मण जी को छोड़ देते हैं और लक्ष्मण को छोड़ करके वो राम जी उसके मृग के पीछे चले जाते हैं और जाते जाते बहुत दूर तक ले जाते हैं। और सीता मैया कहती है उस समय वो राक्षस जो था मारीची वहां से जोर जोर से आवाज कर रहा था, सीता जी को लगा कि शायद मेरे पति राम संकट में हैं, हे लक्ष्मण उनकी सहायता के लिए तुम चले जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे राम को कभी कोई संकट नहीं आ सकता है, उनको दृढ़ विश्वास था, परंतु माया है कार्य करना है, इसलिए कहा कि हे देवी मैं चला तो जाता हूं परंतु एक मैं लक्ष्मण रेखा खींचता हूं उसके बाहर नहीं आना। लक्ष्मण ने वो लक्ष्मण रेखा खींची और वहां पर रावण वेश बना करके आया और बहुत से लोग कहते हैं कि जो सीता मैया है उसको रावण वो सीता को असली सीता को नहीं ले गया क्योंकि सीता मैया उस अग्नि में प्रवेश कर गई थी। वास्तविक सीता जहां पर अग्नि थी उसमें उसने प्रवेश किया था और केवल वो रावण तो मायावी सीता को लेकर चला गया। ये वापिस आए तो भगवान मनुष्य की तरह देखा कि हे सीता करते हुए वन में विचरण कर रहे हैं और केवल दर्शन दे रहे हैं। वहां पर भगवान की भेंट हनुमान जी से हुई, वहां पर भगवान की भेंट सुग्रीव से हुई और उन्होंने वहां पर बैठ करके वो चातुर्मास का काल था इसलिए उन्होंने विचार किया कि चातुर्मास समाप्त होते ही अपने को वहां पर वानर सेना बनाई। आप लोगों ने सब श्रवण किया और वहां जाकर के जहां पर रावण सीता को ले गया है जटायु से पता लगा कि इसी दिशा में गया है रावण, दक्षिण दिशा में भगवान ने प्रवेश किया, वहां पर प्रस्थान किया और दक्षिण दिशा में जाकर के समुद्र के तट पर जाकर के बैठ गए और भगवान शिव ही है जो मार्ग बतलाने वाले हैं, इसलिए पहले भगवान शिव का पूजन हुआ है, वहां पर रामेश्वर का पूजन हुआ है। भगवान श्री राम ने रामेश्वर की स्थापना की है और रामेश्वर की स्थापना करने के पश्चात भगवान श्री राम ने उस सागर से रास्ता मांगा, परंतु वहां पर वो मार्ग नहीं दिया और उसने कहा कि हे भगवान, आपके पास में नल और नील है, ऐसे दो विशेषज्ञ है ये सेतु बनाने के, इनसे आप सेतु बनवाओ और फिर यहां से आप जाकर के वहां पर सीता को आप वापिस ले आओ। वहां से भगवान श्री राम उनके नल नील उन्होंने वहां पर सब लोगों ने वहां पर सेतु बनाया। भगवान श्रीलंका में प्रवेश करते हैं और वहां पर जो कार्य करना था वो कर लिया है और सीता को जब वापिस लाया अशोक वन से, तो सीता मैया को वहां पर लोग कहते हैं। भगवान श्री राम ने वहां पर अग्नि परीक्षा ली, ये अपवाद है, किसी को पता ही नहीं था कि भगवान का चरित्र क्या है, भगवान के मन में क्या बात है, वो किसी को लोगों को पता थोड़ी लगती है। तो भगवान ने ये अग्नि प्रवेश इसलिए किया कि ये जो यहां पर सीता थी तो वास्तविक सीता तो थी नहीं, सीता जी नाम का ऐसा कुछ था कि वहां पर जो वास्तविक सीता थे तो अग्नि में प्रवेश किया हुआ था, इसलिए अग्नि से उस वास्तविक सीता को बाहर लाना था और इसलिए भगवान ने कहा कि तुम अग्नि में प्रवेश करो, तुम्हारी परीक्षा होगी। भगवती वहां पर अग्नि में प्रवेश करती है और वहां से वास्तविक सीता बाहर आती है और फिर पुष्पक विमान में चढ़ करके भगवान श्री राम कहां आते हैं, अयोध्या तरफ आते हैं। तब तक उनको पता लगता है कि भरत अब बहुत अधिक प्रतीक्षा नहीं करेगा, वहां पर भरत जी का पुनः मिलन हो जाता है और मिलन होने के बाद में भगवान श्री राम अयोध्या पहुंचते हैं और अयोध्या पहुंचने के बाद में बड़ा उत्सव मनाया जाता है, आज तक हम लोग मनाते हैं। कौन सा है उत्सव? दीपावली का उत्सव आज तक हम लोग मनाते हैं, इसलिए उस दिन भगवान आए और उनके निमित्त में उन जो अयोध्यावासियों ने भगवान श्रीराम के उत्सव के लिए उन्होंने दीपक जलाए, संपूर्ण अयोध्या को प्रज्वलित कर दिया, उनको देव दीप्यमान किया। भगवान श्रीराम वापिस आए और राजा बने। अगर पहले राजा बनते तो शायद वो केवल राजा ही होते, भगवान श्री राम नहीं होते। भगवान श्री राम के जन्म का अगर सार्थकता है वो 14 वर्ष है जिन्होंने उनको भगवान का दर्जा प्राप्त करा दिया, क्योंकि राजकुमार होते हुए भी वनवन में गए और धर्म की पुनर्स्थापना की, इस प्रकार का जीवन चल ही रहा था। परंतु बोलते हैं कि कुछ निंदक होते हैं, एक दिन भगवान श्री राम भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि एक जो कोई उस नगर में रहने वाला कोई धोबी था, उसकी पत्नी कहीं गई हुई थी, वापिस आई थी, उसने कुछ भला बुरा कहा और उसने कहा कि मैं राम थोड़ा हूं कि तुमको मैं दोबारा रखूंगा। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो जनहित में जन की भावना से काम करने वाले होते हैं। भगवान राम ने विचार किया, लीला तो करनी है, भगवान लीला करते हैं और हम भगवान की लीला को हम अन्यत्र समझते हैं, उसको अन्यथा लेते हैं। भगवान श्री राम लीला कर रहे हैं और उस समय भगवान ने सीता को अपने गुरुदेव वाल्मीकि ऋषि के लिए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भेज दिया और वहां पर लव और कुश का वहां पर जन्म होता है और भगवान श्री राम 13,000 वर्ष अग्निहोत्र लेकर के राज्य शासन तो करते हैं परंतु प्रतिदिन अग्निहोत्र करते हैं और सरयू तट पर उस सीता का उस परमात्मा का ध्यान करते हुए उन्होंने 13,000 वर्ष तक राज्य किया। और इधर कहते हैं कि ये दो अलग अलग परंपराएं चली, एक सूर्यवंश चला और एक चंद्रवंश चला। एक चंद्रवंश है, ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं वो है अत्रि ऋषि और अत्रि ऋषि से उनके नेत्रों से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है और चंद्रमा से कहते हैं कि उनसे बुध हुआ और बुध से राजा पुरुरवा हुए, पुरुरवा से नहुष हुए और नहुष के छह पुत्र, उसके उनके छह पुत्र हैं, यति है, ययाति है, संयाति है, आयाति है, विनति है और कृति है, ऐसे छह पुत्र हैं। उनका विवाह शर्मिष्ठा के साथ में हुआ, उनका विवाह देवयानी के साथ में हुआ। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, ये जो देवयानी थी ये तो शुक्राचार्य की पुत्री थी जो ब्राह्मण थे, और राजा ययाति तो क्षत्रिय थे, इनका विवाह कैसे हुआ? तो यहाँ पर थोड़ी सी बात कहते हैं कि जो एक वर्षप्रभा नाम के एक राजा थे, वहां पर शुक्राचार्य जी रहते थे, और वहां पर शुक्राचार्य जी की जो कन्या थी जो देवयानी, और वृषपर्वा की जो कन्या थी जो उसका नाम तो शर्मिष्ठा था, वो दोनों बड़ी सख्य थी, सहेली थी। दोनों स्नान करने के लिए एक दिन गई, और स्नान करने के लिए गई तो वहां पर कुछ लोग देवता आए, और उस समय देवताओं को देखा और दोनों ने जल्दी जल्दी वस्त्र पहने, और वस्त्र और अदला बदली हो गए। शर्मिष्ठा के वस्त्र देवयानी पहन ली, और देवयानी के वस्त्र जो शर्मिष्ठा पहन ली, और वहां पर दोनों में विवाद हो गया। विवाद क्या हुआ? देवयानी ने कहा कि हे क्षत्रिय पुत्री, तुम हमारे वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं हो, और वहां दोनों में जो विवाद हो गया, और वहां पर देवयानी आई और उन्होंने कहा कि पिताजी अपने को अब ये राज्य छोड़ करके जाना चाहिए। शुक्राचार्य जी जाने लगे, उस समय राजा ने कहा कि भगवान आप क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कहा पुत्री हमारी यहाँ पर प्रसन्न नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ। कहा कि पुत्री को जो अभिष्ट हो हम उसको देने को तैयार हैं। देवयानी ने कहा कि अगर ये देवयानी, उस समय देवयानी को वो कहीं कुएं में ढकल के आई थी, और वहां पर जो राजा ययाति थे उनका उन्होंने स्पर्श करके बाहर निकाला था। कहा कि मैं उनके साथ, मेरे साथ अगर इसका ये जाएगी दासी बन करके, तो मैं इनके साथ में जा सकती हूँ, तो वहां पर मैं यहाँ रह सकता हूँ। वहां पर उस शर्त को मान लिया गया, और शर्मिष्ठा के साथ में, देवयानी के साथ में ययाति का विवाह हुआ, और शर्मिष्ठा उनके साथ में गई दासी बन करके। उस समय उनके अनेक वहां पर पुत्र हुए, तो देवयानी के तीन पुत्र हुए, और वहां पर देवयानी के जो तीन पुत्र हुए, उस समय शर्मिष्ठा को भी लगा कि मेरा भी कोई पुत्र होना चाहिए, और उन्होंने विशेष अनुरोध किया ययाति को, और उससे उनके भी दो पुत्र हुए। उसके ये बात पता लगा देवयानी को, और देवयानी को जो पता लगा अपने पिताजी को बात जा करके कह दी, कहा कि ऐसा ऐसी घटना घटी हुई है, और वहां पर शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया ययाति को, जाओ तुमको वृद्धावस्था प्राप्त हो। ऐसा श्राप मिलते ही वो जो हमारे जो ययाति थे वो वृद्ध हो गए, और उसके बाद में फिर से उन्होंने कहा कि भगवान इसका कोई परिष्करण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि, तो बोले कि तुम्हारा जो छह पुत्र है उसमें से कोई अगर तुम्हें अपनी जवानी दे दे तो तुम उस जवानी को ले सकते हो, परंतु वो जो पुत्र है वो वृद्ध हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं पूछ लेता हूँ। सभी पुत्रों से पूछा, परंतु कहा कि अपना यौवन दे करके हम पहले से बुद्धे हो जाए। एक केवल जो ययाति थे, जो वहां पर जो इनके पुत्र थे, जो ययाति राजा, तो एक पुत्र ने उनको, यदु ने उसको स्वीकार कर लिया। उनका जो पुत्र था यदु ने स्वीकार कर लिया, और यदु ने कहा कि पिताजी अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे आप जवानी ले लो। और यदु ने वहां पर जवानी ले ली, और उसके बाद में बहुत समय तक राजा ययाति वहां पर राज्य करते रहे, परंतु अंत में जाकर के उनको भी पश्चाताप हुआ, और वो फिर से देवयानी को बोलने के लगे कि अब जो हमारे भोग भोगते हुए जो इंद्रिया है ये हमारा ही भक्षण करती है। इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार का यहाँ पर चंद्रवंश और सूर्यवंश चलता रहा, इसमें पांडव भी आते हैं, इसमें अनेक प्रकार के वहां पर यदुवंश भी आता है। और श्रवण करते धीरे 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 सब श्रवण करा दिया, यहां पर चंद्रवंश का भी पूर्ण वृत्तांत सुना दिया और इधर सूर्यवंश का भी वृत्तांत सुना दिया और यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण की भी कथा सुना दी। राजा परीक्षित को, राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान मैं इतने समय से तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण करने के लिए यहां पर बैठा हूं, आप वो श्रवण करने के लिए बोले कि कुछ तुमको भूख लगी हुई, प्यास लगी हुई होगी। तो राजा परीक्षित ने कहा कि एक बार मुझे प्यास लगी थी और उसका प्रायश्चित मैं अभी तक कर रहा हूं, अब ना मुझे भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, आप मुझे वो कथा सुनाइए। और फिर सुखदेव जी महाराज उस कथा को यहां पर कहने लगते हैं कि हे राजा परीक्षित, ऐसी जो कथा सुनना चाहता है उसमें जो वहां पर सुनने वाले होते हैं, उसको सुनाने वाले होते हैं, उसको आयोजन करने वाले होते हैं, वो बड़े पुनीत होते हैं। वासुदेव कथा प्रश्न, बोलते हैं कि जो वासुदेव संबंधी जो कथा करता है, प्रश्न करता है, पुरुषान श्रीन पुरानी ही, बोलते हैं कि वो चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वक्तारम, यहां पर कहते हैं कि वक्तारम, वक्ता ऋक्षकम श्रोत्र, बोलते हैं कि जो वक्ता है, श्रोता है, जो आमंत्रण करने वाले हैं, सबके सब वो पुनीत हो जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का हम प्रवेश कर रहे हैं, तो हम जब प्रवेश करें तो अब क्यों ना थोड़ा उत्साह आना चाहिए। अभी कथा सुनते सुनते थोड़ा सा जो सर भारी होता है, थोड़ा सा भगवान का स्मरण करते हुए आगे कथा में प्रवेश करते हैं।
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो। बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि 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 गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो
कृष्ण कन्हैया
लाल की जय।
अनेक राक्षसों का आविर्भाव हो गया था और उनके कारण धरती पर बहुत भार हो गया था। जब धरती पर भार होता है, जब असत कर्म होते हैं, जो पाप होते हैं, उस कारण से धरती पर भार हो जाता है। जब लोग अधर्मी हो जाते हैं तो उस समय धरती लगता है कि मेरे पर बहुत बहुत वजन बढ़ रहा है, और जब धरती माता को ऐसा लगता है उस समय वो गौ का रूप धारण करती है, और गौ का रूप धारण करके भगवती ब्रह्मा जी के पास जाती हैं, और ब्रह्मा जी के पास में जाकर के स्तुति करती है कि भगवान मेरे पर बड़ा भार बढ़ गया है, इसका कोई उपाय आप करें। ब्रह्मा जी ने विचार किया, सभी देवताओं को लेकर के उस गौ को लेकर के ब्रह्मा जी ब्रह्मा तत्र गत्वा जगन्नाथ भगवान के पास स्तुति करने के लिए देव जीव वृषाकिवम उन्होंने जाकर के समुद्र के तट पर जाकर के सभी देवता है गौ माता है। और यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पुरुषम पुरुषोक्तेन उपस्थते समाहिता, वहां पर पुरुषोक्त के द्वारा भगवान की स्तुति की। भगवान की स्तुति करना हो तो वेदोक्त स्तुति है पुरुषोक्त, उसके पांच मंत्र हम लोग श्रवण करेंगे।
सहस्रशिरेखा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपादा सभूमिकं सर्वा तत्प्रदवा चतुष्टदशाङ्गुलं मा पुरुषा एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्छवाव्यं मा भूतामृतत्वस्येषानो जगन्नेनाधिरोहति एतावानस्यमहिमातो जायाशपुरुका आदोश्चक्षुषवा भूतानि तेतादस्यामृतं देवे एतादूर्ध्वा उदये पुरुका आदोस्येहा भावस्तु नः ततो विकवन्द्रकरामत्ता शनानशने अभि ततो विराडजायदपि राजो अधिपुरुखः सजातो अत्यार्च्यता पश्या भूमिमथो पुरा।
भगवान की स्तुति वेद मंत्रों के द्वारा, जैसे यहाँ पर कहा है पुरुषम पुरुषोक्तेन पुरुषोक्त के द्वारा भगवान की प्रार्थना की देवताओं ने, और वहाँ पर आकाशवाणी हुई। ब्रह्मा जी ने उसको श्रवण किया और ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे आदेश प्राप्त हुआ है, मुझे वो संदेश प्राप्त हुआ है। भगवान ने मुझे कहा है कि आप लोग अपने अपने स्थान पर चले जाओ और जितने देव हैं, देवता हैं, देवंगना हैं, वहां पर जाकर के तुम लोग अवतार ग्रहण करो। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः पुरः। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को आदेश दिया कि आप लोग अपने अपने स्थान पे चले जाओ, और भगवान ने मुझे आदेश दे दिया है कि भगवान वसुदेव के ग्रह में अवतार ग्रहण करेंगे और ये दुष्टों का विनाश कर देंगे। और सभी के सभी देवता वहां से प्रस्थान करते हैं और सब लोगों ने अपना अपना जो उनका दायित्व था उसको निभाने के लिए अवतार ग्रहण किया है। और पहले की बात है, कहते हैं सूरसेनो यदुपतिर मथुरा वाचिनम पुरी। जो एक उस समय प्राचीन काल की बात है, जो सूरसेन उनके उनको मथुरापुरी में रह करके वो शासन किया करते थे, और उनके जो सूर के जो पुत्र हैं वसुदेव जी महाराज का विवाह देवकी के साथ में, देवक की कन्या उसके साथ हो रहा था। बड़ा सुंदर विवाह संपन्न हुआ, और विवाह संपन्न होने के बाद में उनकी उनका एक चचेरा भाई था जिसका नाम कंस था, वो भी बड़ा प्रसन्न था बहन का विवाह हुआ है। और उसको जब विदा करने वाले थे, वो विदा करते समय वो स्वयं उस रथ पर बैठ गया और रथ को हाँकने लगा। उस समय आकाशवाणी हुई, ये कंस तो जिनको विदा कर रहा है उसका आठवां गर्भ तुम्हारा काल है, उससे तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा सुनते ही कंस तो दुष्ट था ही, वो उतर गया, अपने बहन को नीचे खींचा, उसके बाल पकड़ लिए और उसको मारने के लिए उद्यत हुआ। वसुदेव जी ने यह दृश्य देखा, वसुदेव ने कहा कि भगवान आप क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। कंस ने कहा कि मैंने अभी अभी सुना है कि इसका आठवां गर्भ मेरा काल होगा, इसलिए मैं उसको अभी मारूंगा। वसुदेव जी बड़े बुद्धिमान हैं, वसुदेव ने कहा कि अगर इसको अभी आप देवकी को मारोगे तो आठवां गर्भ उत्पन्न होगा। बोले तो नहीं होगा। वसुदेव जी ने कहा कि उस समय तो फिर इसका मतलब है कि आकाशवाणी झूठी पड़ जाएगी, जब देवकी नहीं रहेगी उसका आठवां गर्भ भी नहीं आएगा तो आकाशवाणी झूठी पड़ जाएगी। आपको आठवें घर से तो, गर्भ से तो मतलब है, उससे केवल तात्पर्य है। कंस ने कहा कि मुझे उतने से तात्पर्य है। और वसुदेव जी की सुंदर वाणी सुनकर के उसने कहा कि आप लोग चले जाओ। वसुदेव जी महाराज शुद्ध अंतकरण वाले हैं, सब विश्वास करते थे उस पर, पूर्ण विश्वास करते हुए उनको वहां से छोड़ दिया। और वसुदेव जी महाराज और देवकी वो चले जाते हैं, और उनका प्रथम पुत्र उनका प्रकट होता है, उसका नाम है कीर्तिमंत। भगवान का सबसे पहला कीर्तिमंतम प्रथमम, कीर्तिमंत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। जैसे वसुदेव जी ने वचन दिया था अपने बालक को लेकर के, वसुदेव जी कंस के पास चले जाते हैं। हे कंस, ये प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ है, अभी तुमको जो कुछ करना हो कर लो। कंस ने कहा कि मुझे तो आठवें गर्भ से खतरा है, ये पहले से नहीं, इसलिए इसको आप ले जाओ। वसुदेव जी को पता था कि ये दुष्ट आत्मा है, ये कब पता नहीं क्या इसके दिमाग में आ जाए। वो लेकर के घर में आए और ऐसे उनके छह पुत्र हुए, और जब छह पुत्र हुए उस समय नारद जी ने विचार किया कि अगर ये दुष्ट का पाप का घड़ा नहीं भरेगा तो भगवान का अवतार होगा नहीं, इसलिए उन्होंने वो चले गए कंस के पास। ऐसे संत होते थे, सब जगह जाना उनका, कहीं भी जा सकते थे। वो कंस के पास गए और उन्होंने कहा कि हे कंस, तुमको पता है तुमने छह पुत्रों को छोड़ दिया। कंस ने कहा कि मुझे तो केवल उसी से भय जो आठवां है। नारद जी ने कहा कि आठवां कौन सा, जो पहला आठवां है कि आठवां आठवां है कि सातवां पहला है कि पहले दूसरा सातवां है। उन्होंने कुछ चक्कर में डाल दिया। बोले मुझे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आके नहीं समझ में आ रहा है तो उन्होंने वहां पर वो आठ फल रख दिए। अब गिनती शुरू करो, कहां से करेगा, ये पहला है कि ये पहला है कि ये पहला है। वो चकरा गया, उसने कहा कि ये क्या, कहा कि वो तो कहीं भी पैदा हो प्रकट हो सकते हैं। इसलिए वो कंस ने विचार किया और कंस गया और देवकी और वसुदेव जी से कहते हैं कि सभी छह के छह पुत्रों को उसने समाप्त कर दिया और देवकी और वसुदेव जी को बंदी गृह में डाल दिया। अब सातवां गर्भ देवकी के उदर में आता है, सप्तमो वैष्णवम धाम यवंतम प्रत्यक्षते गर्भो बभो देवक्याम हर्षोक्षोक विवर्धनः। ऐसे कि सप्तम गर्भ देवकी के उदर में आता है तो उनको हर्ष भी हुआ और उसको शोक भी हुआ, हर्ष ये हुआ कि अब सप्तम पुत्र पैदा होने वाला है। पहले तो 6 तो मारे जा चुके हैं, अब तो सप्तम हमारा पुत्र आने वाला है। और उस समय थोड़ी सी चिंता भी होने लगी, परंतु ये जो दुष्ट कंस इसको मार डालेगा। भगवान ने विचार किया और भगवान ने अपने योग माया का आश्रय लिया और योग माया को कहा कि गच्छ देवी व्रजम भद्रे, ये देवी तुम यहाँ से कहाँ जाओ, तुम व्रज में जाओ और व्रज में जाकर के जो वहां पर एक वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है जिसका नाम रोहिणी है, उनके उदर में इस गर्भ को वहां पर स्थापित कर दो और इसके बदले में तुमको मैं बहुत से नाम दूंगा, तुम्हारी कीर्ति अमर रहेगी, तुमको लोग अनेक नामों से पुकारेंगे, कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कनिते च माया नारायणी शानी शारदित्यम्बिके च। शारदा है, चमुंडा चामुंडा है, कृष्णा है, माधवी है, नारायणी, अनेक नामों से तुम्हें वहां पर पुकारेंगे। इसलिए उस गर्भ को लेकर के वो महामाया योग माया जाकर के वहां पर रोहिणी के उदर में प्रस्थापित किया और सब लोगों को पता कि अब रोहिणी का जो देवकी का जो सप्तम गर्भ है तो रहा नहीं। सब लोगों को ऐसा तो लोग अलग अलग तरह की बातें करने लगे और उस समय कहते हैं कि तभी भगवान ने विचार किया कि अब मुझे भी प्रवेश करना चाहिए, जन्म ग्रहण करने के लिए मुझे भी अपना कार्य प्रारंभ करना चाहिए। तो भगवान सबसे पहले वसुदेव जी के मन में आए, मन में प्रवेश किया और उसके बाद में वसुदेव जी के द्वारा वो देवकी के मन में उदर में प्रवेश करते हैं और जब भगवान वहां पर उदर में प्रवेश करते हैं देवकी का तेज बढ़ने लगता है और देवताओं को पता लगता है कि आप भगवान थोड़े दिन में प्रकट होने वाले हैं क्योंकि वो कारागृह में है और कारागृह होने के कारण वहां पर देवकी और वसुदेव जी वहां पर विद्यमान है और सभी के सभी देवता उनका प्रार्थना करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए वहां पर जाते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, भगवान सत्य स्वरूप है। ये कौन कह रहे हैं? देवता कह रहे हैं। सत्यस्य योनिम नीतं च सत्ये, भगवान का ये स्वरूप है। सत्यस्य सत्ये मत सत्य सत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, भगवान आप त्रिकाल सत्य हैं, आपके सिवाय जगत में कुछ है ही नहीं, आप पहले भी थे, अभी भी हैं और आप रहने वाले हैं, त्रिकाल सत्य आप हैं। इसलिए आपकी अवस्था उस समय ऐसी है, ऐसे मधुर वाणी से उन्होंने भगवान की वहां पर स्तुति की है और स्तुति करने के बाद में सभी अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं और अपने स्थान पे जाने के बाद में भगवान का अवतार का प्रसंग आता है। इस समय भगवान अब अवतार लेने के लिए वहां पर तैयारी चल रही है तो भगवान श्री कृष्ण का जो प्रागट्य होता है उस समय का वातावरण का यहाँ पर सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। अथ सर्वगुण पेत काल परमशोभिन, जो काल है वो सर्वगुण संपन्न हो गया है। यदि एव जन जन्म जन्मश शांतर ग्रह तारकम, उस समय का वातावरण है ऐसा है, काल सर्वगुण संपन्न हुआ है, काल कभी शुभ नहीं होता है, जो शुभ लक्षण होते हैं तो शुभ होता है परंतु अब भगवान के झांकी से धीमे धीमे लाओ। वो तो हम लोगों ने देखा नहीं, जो कारागृह में तो हम लोग वहां पर कोई थे ही नहीं और कारागृह में बहुत देवता लोग खाली जाकर के उन्होंने वहां पर उनका दर्शन किया था। अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभन, वो काल है आज शोभायमान है, उसको आज आनंद है कि आज मेरे समय में भगवान का अवतार होने वाला है, भगवान का प्रागट्य होने वाला है। और उस समय रोहिणी नक्षत्र हैं, अष्टमी तिथि है, रात्रि का समय है। रात्रि के समय में बड़ा आकाश वहां पर सबके मन प्रफुल्लित है। दिशा प्रत्येन गगनम, सब दिशाएं बिल्कुल प्रसन्न है। निर्मलोडो गुणोदयम, आकाश में तारे चमक रहे हैं। मही मंगल भूयश्च, वो पृथ्वी है जो मही है वो बिल्कुल पवित्र हो गई है। पुरग्राम व्रजाकर, मंगलमय वातावरण है। जो छोटे छोटे गांव हैं वहां पर पूर है, बड़े प्रसन्न हैं। यद्यपि भाद्रपद मास है, उत्तर भारत में उसको भाद्रपद कहते हैं, अपने यहां पर उसको श्रावण कहते हैं। श्रावण कृष्ण पक्ष, श्रावण कृष्ण पक्ष चलवा दो, ऐसे ही बजाते हैं। जब भगवान का जो प्रागट्य होने वाला होता है थोड़ा धीमे बजाते हैं।
कानूड़ो कानो कानो राधा से गोरी गोरी, कानूड़ो कानो कानो राधा से गोरी गोरी, से एक नवल किशोर से एक नवल किशोरी, कानूड़ो कानो कानो राधा से गोरी गोरी, कानूड़ो कानो कानो। पूछो छो मुझने के सुख पूछो मने जाग में क्या, मोर बनी धन गाट करे मन, मोर बनी धन गाट करे, मोर बनी धन गाट करे मन, मोर बनी धन गाट करे धन गुरु जन चोर मारो मान, धन गुरु जन चोर मारो मान, मारो मन मोर बनी धन, अरे मन मोर बनी धन, अरे मन मोर बनी धन गाद करे के मारो मन, मोर बनी धन गाट करे, मोर बनी धन गाट करे, मोर बनी धन गाट करे, मोर बनी मनोचन मन जन भरे, मन साय धन हरिया मन कसम, छठ करे सजना चर श्यामल बंद धरे, सजन श्यामल बंद धरे, सर प्राण जोरी फुल कट गयो, पथराई धन
हाथी घोड़ा पाल
जय कन्हैया लाल के,
जय कन्हैया नंद खैर आनंद भया,
जय कन्हैया लाल के
नंद खैर आनंद भया,
जय कन्हैया लाल के
नंद खैर आनंद भया, हाथी घोड़ा पालकी
जय कन्हैया
लाल, हाथी घोड़ा पालकी नंद खैर आनंद भया,
जय कन्हैया लाल
के नंद खैर आनंद भया,
जय कन्हैया लाल।
जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की,
पूरी में आनंद भयो,
जय कन्हैया लाल की,
पूरी में आनंद भयो,
जय कन्हैया लाल की,
पूरी में आनंद भयो, ए हरि गोरे बोल की,
जय कन्हैया लाल की,
ए जनकरे आनंद भयो,
अरे इतने सारे भक्त लोग हैं और ऐसी नालंदा की चीजें नहीं चलेगी, इतनी जोर से ये बुलाओ कि सही में भगवान हाजिर हो जाए। पांची बार की सकनैया लाल की, दोनों हाथ ऊपर करके पांची बार की सकनैया लाल की, वाह 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 वाह।
हे रंग लो जम्यो कालिंदड़ी ने घाट, छोगाला तारा और छबिला तारा और रोपाला तारा, रंग भेरो जुवे तारे वाट रंग लो, हे रंग लो
छोगाला तारा और छबिला तारा, रंग भेरो जुवे तारे वाट रंग लो,
हाल 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 वही जाय रात भानवा,
हाल हाल हाल
शेरे परवान, तो गाला तारा और छबिला तारा और रंगिला तारा, रंग भेरो जुवे तारे वाट रंग लो,
ए रंग लो तारो काल से दिने खास, तो गाला तारा और रंगिला तारा
Hey!
जी तारा भाला जी तारा भाला जी तारा
का जब प्रागट्य होता है ऐसा ही सबके मन में एक उत्साह होता है। उत्साह भगवान जिस समय उस समय प्रकट हुए थे उस समय का समय बता रहे हैं, उस समय क्या कैसा समय था। निशीथे तमद्भूते अंधकार छाया हुआ था। जायमाने जनार्दने मृत्यु और जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले परमात्मा का स्वयं वहां पर आविर्भाव होने वाला था। और यहां पर हम लोगों ने देखा कि यहां पर हो चुका है। देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय। उस समय देवकी का ऐसा मुखमंडल केवल भगवान के समान दिख रहा था और देवताओं के समान दिख रहा था। आविरासी यथा प्राज्ञम विशुंदूर इव पुष्कला। ये भगवान के जन्म का ये श्लोक होने के कारण आपको फिर से वापस हम लोगों को बिठाना पड़ा, क्योंकि हम लोगों के अंदर जो उत्साह होता है ना उत्साह, उस समय जो भगवान आने वाले होते हैं तो हम उत्साह से ओतप्रोत होते हैं। और इस समय यहाँ पर भगवान का साक्षात अवतार हुआ और साथ साथ में जो बालक है छोटे छोटे वो भी आकर के भगवान कृष्ण के रूप से यहाँ पर आते हैं। और अब भगवान का थोड़ा सा नामस्मरण करें और फिर आगे आरती की आप लोग तैयारी करें।
नंद गेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद गेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। हाथी दिना घोड़ा दिना और दिना पाल की। हाथी दिना घोड़ा दिना और दिना पाल की। हाथी दिना घोड़ा दिना और दिना पाल की। हाथी दिया घोड़ा दिया और दिया पाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरे आनंद भयो कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद घेरे आनंद भयो कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
नंद घेरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
आपना मला समा के हलो हलो ने आपना मला समा
એ અમારે બધું સુંદર ચિંતિન વાળા આવ્યા અને છૂટું 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 કરતા હાજ અરે આજ પ્રભુજી ને આગળે હલો તો મારા પ્રકાશભાઈ મહેતા આવ્યા અને ઓલી ફેસની પહેલી બગલમાં લઈને આવા પ્રકાશભાઈ મહેતા આવ્યા અને ફેસની પહેલી બગલમાં લઈને આજ અરે અમારે વિશ્વેશ્વર હલો તો મારા રાજેશભાઈ વચ્ચે રાજેશભાઈ વાઈ આવો આવો વચ્ચાઓ એને વચ્ચાઓ વચ્ચાઓ પછી પછી પેલા વચ્ચાઓ તો અમારા રાજેશભાઈ વાઈ અમિતાબેન ને લઈને આવ્યા અમારા સ્વામીજી ને ચરણ સ્વામીજી તો લોકો આશીર્વાદ દેજો સાદી કરે આજ લાલ ભજીલો 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 પ્રભુ અમારો તો વિનાબેન મહેતા ક્યાં વિનાબેન મહેતા તો અમારો ભાસ્કરભાઈ આચાર્ય જો બચ્ચે કો લેકર લે જાય તો અમારે ભાસ્કરભાઈ આચાર્ય બડે પ્યાર સે બચ્ચો કો લેકે આજ એ ઠંડ સુખેરી આઈ હૈ ભગવત કથા મેં એસા કભી દેખા નહીં મેં પહેલી વાર દેખ રહા હું તો સુખેરી આઈ હૈ એ ઠંડ ઠંડ અજી અમારે ભજીલો ભજીલો પ્રભુ જી ને ભજીલો ઓય 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 તો મારે નિત્યાનંદ સ્વામીજી આયે હમારે પ્રેમપુરી આશ્રમ ઠંડે ઠંડે ખડી આજ ની સુબહ આઈ હૈ આજ તમે આજ તમે ભજીલો વકીલો ભજીલો પૂજી તો ભજીલો વકીલો તમારો મેળો પાઠ થઈ દાદા આજ ભજીલો તમારો તો અમારા ખેડે ભાલાભાઈ ખેડે ભાલા અલફિયા અમારી દીદી ક્યાં દીદી 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 આવો સ્વામીજી અને દીદી જી આગળ ચલે ગયા મેં આ રહો મેં આ રહો એક મિનિટ બોલ ફિકરી સકલિયા મેં કભી હાર પહેરતા નહીં હું જો હાર પહેરે તો હાર હો જાતી હૈ લેકિન જબ સંતો હાર પહેરા તો જીત હો જાતી હૈ તમારા બાલા બેન દીદી આલિયા અને આજ પ્રેમ પૂરી વાયા આજ મેં પ્રેમપુરી મેં સ્વામીજી મેં જીતતા હું પ્રેમપુરી મેં તો ઇસકી વજહ સે તો અમારી દીદી આજ આઈ હૈ ભાગવત સંતા મેં બડે પ્યાર સે આજ સબ કોઈ ઇકઠા કરકે અરે ભજન ગુણ ગાન ગા આજ ભજીલો 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 પ્રભુ જી ને ભજીલો 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 પ્રભુ બોલ ઠીક સકલિયા
ભાગવત ભગવાન કી હૈ આરતી પાપિયો કો પાપ સે હૈ તારતી ભાગવત ભગવાન કી હૈ આરતી પાપિયો કો પાપ સે હૈ તારતી અમર ગ્રંથ યે મુક્તિ પંજ યે પંચમ વેદ નિરાલા સબ જ્યોતિ જગાને વાલા હરિ નામ યહી હરિ
हरि नाम रहे हरि ध्यान रहे जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला
हरि दर्शन कराने वाला
ये दुख करनी दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी
श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती
ये मधुर बोल पग पंख बोल कुछ मार्ग बताने वाला
बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला
श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही प्रभु के महिमा
आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती
भरपूर गौरव करना बतारम
सार सारम
कर्पूर पूरेण मनोहरेण सुवर्ण पात्रो दर्शन
देना सदांगे जगदे जगदे
स्वाहा भगवते श्रीकृष्णाय नमः भागवत महापुराणाय नमः मंगलारार्धिक्यं कर्पूरारार्धिक्यं च समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पेन देवतानां वन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मनाभिवन्दये करो प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय पथयसाहिने नमो वयम् वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यम् भोज्यम् स्वाराज्यम् वैराज्यम् पारमेष्ठम् राज्यम् महाराजमाधिपत्यमयम् समन्तपर्या ईशान्सार्वभौमत्सार्वाईशान्ताधापराधात पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽपि गीतो मरुतः सर्वेऽपितारो मरुतस्यावसङ्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रियैर्विषवे देवासवासदैति एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जनर्मया दत्त गृह्यतां परमेश्वर भूर्भुवा स्वाहा भगवते श्रीकृष्णाय नमः भागवत महापुराणाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे अन्यथा शरणम् नास्ति त्वमेव शरणम् मम तस्मात्कारुण्यभावेन रक्षस्व परमेश्वर मन्त्रहीनम् क्रियाहीनम् भक्तिहीनम् सुरेश्वर परिपूर्णम् तदस्तु मे आवाहनम् न जानामि न जानामि तवार्चनम् पूजाम् चैव न जानामि क्षम्यताम् परमेश्वर गतम् पापम् गतम् दुःखम् गतम् दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्ति पुण्योऽहम् तव दर्शनात् एतानि तेषु अत्र धूपदीपदैवेद्य दक्षिणा प्रदक्षिणा समन्वित कृतपूजनार्चनेन श्रीमहाविष्णु प्रियतान्न मम तत्सद्देवतार्पणमस्तु ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव कृष्ण कन्हैया लाल की जय भागवत महापुराण की जय श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे
आज अपने प्रभु जी की आरती उतारी पर प्रभु जी ने बे मिनट थमारी अपने जमो तो जमाड़ू भगवती जमाड़ू हे जीवन मोरा जमो तो जमाड़ू हे भगवती जमाड़ू हो प्रेमती जमाड़ू हे जीवन मोरा ए वाला मना प्रभुती श्रीराम वाली राम राम श्रीराम जमो तो जमाड़ो हो भावती जमाड़ो हे जीवन मोरा जमो तो जमाड़ो हो भावती जमाड़ो हे जीवन मोरा वाली राम प्रभति से तेर फिरती आजमा तो जमानो हो भावती जमानो हो प्रेमती जमानो हे जीवन मोरा बोल छोकरे से कन्हैया जरा छे छोड़ जी बोलो हाथ पे ऊंचा करी बोल छोकरे से कन्हैया वाह वाह भक्तो वाह